वसुदेवसुतं देवं कंसचालूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।
भगवान कहते हैं कि आत्मा दुर्भिज्ञ है, इसको जानना बहुत मुश्किल है। क्यों ये दुर्भिज्ञ है? तो बोलते हैं आत्मा को कोई जो देखता है वो भी आश्चर्य है। अगर आप जान ले इसको तो बोलते ये भी आश्चर्य है। बोले आत्मा के बारे में कोई बोलता है तो भी आश्चर्य है। क्यों आश्चर्य है? क्योंकि आत्मा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि इस वस्तु का विवरण कर रहे हैं हम। तो जो चीज इंद्रिय गोचर नहीं है, जो मन और बुद्धि के समझ के बाहर की चीज है, उस चीज को अगर आप देख लो यानी समझ लो, आश्चर्य है। और ऐसी वस्तु के बारे में कोई अगर बोलता है, देखो किसी घड़ी के बारे में डिस्क्राइब करना हो तो बहुत लोग बता देंगे, इसका वर्णन कर देंगे, मगर ऐसी वस्तु जिसको आप देख नहीं सकते, जिसके बारे में चिंतन नहीं कर सकते, उसके बारे में कोई अगर बोलता है तो बोलो भी आश्चर्य है। और बोलते हैं सुनने वाले भी आश्चर्य हैं। क्यों? कि अधिकांश लोग कामनी कांचन कीर्ति में लगे रहते हैं, फंसे रहते हैं, संसार में फंसे रहते हैं। संसार को छोड़ के आना भी जो सुनने आते हैं, बोले ये भी आश्चर्य है। और कुछ ये भी आश्चर्य कि सुनने के बाद में समझ में नहीं आया, इतनी साफ वस्तु इतने अगर समझ नहीं आया, बोले ये भी आश्चर्य है। अब 30वें वाले श्लोक में यह कहा गया, देही नित्य बद्योहम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम सोचितुम अर्हसि। अब यहां पर यह एक प्रकरण खत्म हो रहा है। भगवान यहां पर कहते हैं भारत, भारत कौन है? भामिस बताया था हमने पिछली बार, देखो आप भूल जाओगे, 7 दिन में भूल गए। भामिस प्रकाश, रथ मीन्स जो लगा हो, जो प्रकाश को पाने के, प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञान पाने के लिए जो रथ हो उसको हम भारत कहेंगे। तो आप लोग सब ज्ञान पाने के इच्छुक है, इसलिए आप सब भी यहां भारत किसको कहा, भगवान किसको कह रहे हैं? अर्जुन को। जैसे होता है ना रथ, योग रथ, योग रथ क्या होता है? जो योग में लगा हुआ है उसको हम योग रथ कहते हैं, जो भोग में लगा है उसको क्या कहेंगे, जो भा में लगा है उसको क्या कहेंगे, भारत। जिसका भरत वंश में जन्म हुआ है उसको हम भारत कहते हैं, भारत देश में जिसका जन्म हुआ है, भारतीय हम वैसे कहते हैं, उसको भी हम भारत संबोधन कर सकते हैं। और जो देश ज्ञान का प्रचार कर रहा है, कौन से ज्ञान का? आध्यात्मिक ज्ञान का, वो भी भारत है। बोलते हैं भारत न तम सोच तुम हर्षि, तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं शोक करना चाहिए? ये उपसंहार कंक्लूजन कह रहे हैं क्या? देही नित्य अवध्योहम, देही, एक देही है और एक देह है, देह में जो रहता है वो देही है। तो हम लोगों ने दो दृष्टि से देही देखा है, एक देही हमने देखा आत्मा की तरह से, दूसरा देही हमने देखा है जीव की दृष्टि से। भगवान कहते हैं देही नित्यम, दोनों ही नित्य है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा, तो हमें क्या विवेक करना चाहिए? देह और देही का विवेक करना चाहिए। देह अनित्य है, देही नित्य है, देह इम्परमानेंट है, देही हमें क्या चाहिए? नित्य वस्तु चाहिए कि अनित्य वस्तु चाहिए? नित्य वस्तु चाहिए। तो किससे दोस्ती करनी होगी? नित्य से। आप किससे दोस्ती कर बैठे हो? देखो आप सब जानते हो,
बोल रहे अनित्य से।
भगवान कहते हो नित्य वस्तु आपके पास है, क्यों नहीं उसको पकड़ते हो? पहले से ही है, बराबर है आपके पास में, फिर भी हम उससे दोस्ती नहीं करते हैं। और जो अनित्य वस्तु है, कुछ काल तक रहने वाली है, 100 साल तक रहेगी, और क्या रहेगी? तो नित्य वस्तु को छोड़कर अनित्य वस्तु को पकड़कर बैठे हुए, तो हमें विवेक करना है, देह देही का, नित्य अनित्य का विवेक करना है। और ये विवेक करके हमको किसको पकड़ना है? देह को कि देही को? देही को पकड़ना है। क्यों पकड़ना है देही को? क्या मिलेगा देही से? नित्य वस्तु ही नित्य सुख दे सकती है। अनित्य वस्तु क्या नित्य सुख दे सकती है? क्यों? रहेगा नहीं तो कहां से देगा सुख? देखो आप लोगों को सब पता है, पता है, सब साइंस पता है, विज्ञान उसके पीछे क्या है। अनित्य वस्तु कभी नित्य सुख नहीं दे सकती, नित्य वस्तु उपलब्ध है जो कि नित्य सुख दे सकती है। मगर आश्चर्य की बात है, जानने के बाद भी फिर भी हम अनित्य के पीछे दौड़ते हैं। तो देह और देही का विवेक करना है। नित्य है, अवध्योयम, बोलो इसको कोई बाधित नहीं कर सकता, इसको कोई मार नहीं सकता, कोई इसको नष्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं नष्ट कर सकता इसको? तो शंकराचार्य जी दो कारण बताते हैं। पहला कारण बोलते हैं निरवयत्वात्वाद, निरअवयव, निरअवयव मीन्स जिसका अवयव नहीं हो, अवयव मतलब पार्ट, लिम्स, जिसके अंग नहीं हो। इसका मतलब हुआ कि वो आत्मा, वो ब्रह्मन जो है उसके अंग नहीं है। अंग नहीं है मतलब स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है। अब आपको ये तीन शरीर के बारे में मालूम है कि नहीं? ये मालूम नहीं, दुनिया में लोगों को केवल एक शरीर के बारे में मालूम है जो दिखाई पड़ता है। इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और उस शरीर को डायरेक्शन देने वाला है उसको हम कारण शरीर कहते हैं। तो कारण शरीर जो है वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का कारण है, कॉज है। क्योंकि उसका, उस आत्मा का, उस ब्रह्मन का वो निरअवयव है, अंग नहीं है, इसलिए उसका नाश नहीं होता। इसका मतलब हुआ जितनी वस्तुएं अंग वाली हैं उन सब का नाश होगा। अब जैसे मकान है, मकान के अंदर कई अंग है ना, एक खिड़की है, एक दरवाजा है, एक दीवार है, एक छत है, एक उसका फर्श है, अंग हो गए ना, इसलिए उसकी मृत्यु होगी। हमारे शरीर में भी अंग है और हमने देखा है इसकी मृत्यु होते हुए लोगों की, हमारी नहीं हुई है, लोगों की होती देखी है, जिसके अवयव है उनकी देखी है। गाड़ी के अवयव होते हैं, गाड़ी के भी पार्ट्स होते हैं अलग अलग, गाड़ी भी नाशवान है। चूंकि वो ब्राह्मण निरवयव है, उसके अंग नहीं है, इस वास्ते उसका नाश नहीं होता। और दूसरा कारण वो बताया कि नित्यत्वात्, वो नित्य है। कितनी वस्तुएं नित्य हैं इस दुनिया में? एक है और नहीं है। आप सब सहमत हो उनसे क्या? केवल एक ही वस्तु नित्य है, बाकी और सब अनित्य है? आप मानते हो? थोड़ा सा अभी डाउट है मेरे ख्याल। देखो, एक फार्मूला आपको हमने बताया था आगे कि जो कुछ भी दिखाई पड़ता है या सुनाई पड़ता है वो सारी की सारी चीजें जड़ पदार्थ हैं, और जो भी जड़ है वो सब नाशवान है। तो आपकी नजरों में जो भी इस दुनिया में दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी सुनाई पड़ता है, जो भी आप सुनते हो, जो भी टेस्ट करते हो, जिसको भी छू सकते हो, वो सब की सब वस्तुएं अनित्य हैं। तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो नित्य है। जिसको हम देख रहे हैं वो सारी की सारी अनित्य हैं, और जो नित्य है उसको आप देख नहीं सकते। आश्चर्य, उसको देख नहीं सकते आप। बहुत अच्छा। नित्यम अबुद्धम देहे सर्वस्य भारत। अब वो देही कहां है? बोले हर देह में है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य देह में ही है। शंकराचार्य जी यहां कहते हैं, देहे शरीरे सर्वस्य सर्वगत तत्वात् स्थावर आदिषु स्थितापि। स्थावर जंगम, स्थावर मतलब इम्मूवेबल, जंगम में से जो चल रहा है सब में है। जो चल रहा है उसमें तो समझ में आता है, उसके कारण वो चल रहा है, कीड़े मकोड़े जो कुछ भी हैं वो उसके अंदर आत्म तत्व है, देही उसमें है, इस वास्ते वो सब चलते हैं। मगर वो कहते हैं स्थावर में भी है, टेबल में भी है। बोलते हैं टेबल में कैसे है? वो एग्जिस्टेंस है, सत है, इजनेस है, उसके कारण वो वहां पर है। इजनेस मरता है, क्या उदाहरण आप दे सकते हो?
टेबल है।
हाँ, एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ना, पेड़ है, पेड़ के अवयव है ना, ब्रांच है, ट्रंक है, फूल है, पत्ती है, फल है। अब उसको काट दो, मृत्यु हो गई उसकी। जिसके भी अवयव है उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत बढ़िया। अब वो क्या बन गया? अब वो जीवित पेड़ नहीं हुआ, अब वो मृत हो गया। फिर हम उसको कहेंगे क्या है? एक लॉग हो गया, उसको लॉग कहते हैं ना। पेड़ गया, मगर पेड़ का है पना कहां चला आया? लॉग में आ गया, वो नहीं कटा। फिर उस लॉग को काट के हमने प्लैंक्स बना दिए, प्लैंक से फर्नीचर बना दिया। अब लॉग खत्म हो गया, प्लैंक्स हो गए, प्लैंक से हमने फर्नीचर बनाया, फर्नीचर को जला दिया। है कभी नष्ट नहीं होता। इसका मतलब है सारी दुनिया अगर खत्म हो जाए फिर भी है पना रहेगा कि चला जाएगा? रहेगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को तो डर था ना कि ये मारे जाएंगे सब कोई, भीष्म आदि मारे जाएंगे। तो यहां कहते हैं जिससे कि संपूर्ण प्राणियों के शरीरों का नाश किए जाने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। भीष्म आदि तो खैर मनुष्य हैं, वो कहते हैं हर प्राणी के हर देह को नाश कर देने पर भी उस तत्व का नाश नहीं किया जा सकता, वो सदा रहेगा। इसलिए भीष्म आदि सब प्राणियों के उद्देश्य से तुझे शोक करना उचित नहीं है। भीष्म आदमी मारे जाएंगे, वो तो मारे जाएंगे। अगर अर्जुन नहीं भी मारेगा तब भी शरीर मरेगा ही। तो भगवान जो है कहते हैं कि देखो आत्मा की दृष्टि से शोक नहीं बनता, जीव की दृष्टि से भी शोक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता जीव की दृष्टि से? जीव की यात्रा चलती रहती है। शरीर की दृष्टि से भी बोलते हैं शोक नहीं बनता। क्यों? कौन सा शब्द यूज किया भगवान ने? व्यक्त अव्यक्त। व्यक्त होना मैनिफेस्टेशन। किससे मैनिफेस्ट होता है? पंच महाभूत से बना हुआ यह शरीर है। कुछ देर तक मैनिफेस्ट रहा, व्यक्त रहा, फिर क्या होता है? अव्यक्त हो जाता है। क्या बन जाता है? पंच महाभूत बन जाता है। फिर भगवान कहते हैं पंच महाभूत की स्थिति में वो बहुत दिन तक रहता है। अब जैसे आपने एक तो एक अपने कोई एक पॉट बनाया मिट्टी का, जो है एक सिकोरा सा, किशोरा सा, या एक कप बना दिया, एक ग्लास बना दिया, जितने दिन तक रहा टूट गया, फिर क्या हुआ? मिट्टी। मिट्टी की अवस्था में बहुत दिन तक रहेगा, फिर एक बार वो मैनिफेस्ट होगा, व्यक्त होगा, और फिर अव्यक्त। भगवान कहते हैं इनको मारोगे तो अपने घर ही जाएंगे, तो पंच महा तो उनका घर है, वो घर जा रहे हैं, क्या तकलीफ है? जब आदमी घर जाता है तो सुखी होता है ना, खुश होता है ना, सारा दिन काम करके घर वापस आता है, बोले ये भी सब घर ही वापस जाएंगे, इसमें भी शोक करने की दरकार नहीं है। तो 11वां से लेके 30वें श्लोक तक आत्मज्ञान खत्म हो गया। भगवान ने शुरू किया था कि आप जो है प्रज्ञावान की तरह बात कर रहे हो अर्जुन, जैसे आप बहुत बड़े पंडित हो, आपने बहुत से दलीलें तर्क हमको दी हैं। क्या तर्क दी हैं? तो उन्होंने तर्क ये दिया था कि द्रोणाचार्य भीष्म पिता हमारा ये जो है बुजुर्ग लोग हैं, ये सीनियर हैं, इनकी पूजा होनी चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए, और आप मारने को कह रहे हो। ये दलील किसकी थी? और भगवान क्या कहते हैं? मारो, कह रहे ना मारने को। फिर अर्जुन ने एक और दलील दी, ये सब महारथी हैं, इनका महान अनुभव है, और अगर ये लोग चले गए तो जो है राज्य चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि इनका अनुभव बहुत है, और अगर हमको राज्य मिल भी गया तो हम बराबर ही ये सोचते रहेंगे कितने लोगों को मार के हमको ये राज्य मिला। देखो सारे कौरव मारे जाएंगे, कितने लोग मारे जाएंगे याद है आपको? हमने बताया था एक बार कैलकुलेशन कितने लोग होंगे, 40 लाख लोग वहां उपस्थित थे, 40 लाख। ग्यारह अक्षौनी, 7 अक्षौनी, 18 अक्षौनी सेना, और एक एक अक्षौनी में 2,14,000, हमने आपको बताया था, इतने घुड़सवार, पैदल, हाथी के ऊपर में, सैनिक, रथ में, सब मिला के इतने करीब होते हैं। 40 लाख लोगों को उसमें से बचे क्या? 5-6-7 बचे थे, और कोई नहीं बचा था। तो अर्जुन कहता है उसकी दलील एक ये दलील थी कि इतने लोगों को मार के अगर राज्य हमको मिल जाएगा तो उसका जब हम भोग करेंगे तो हमारे मन में बार बार क्या विचार आएगा, इतने लोगों को मार के हम इसको भोग रहे हैं। बोला मैं उसको भी जो है ले नहीं पाऊंगा। और तीसरा जो है ये कहा था, मोहित था, उसने ये भी कहा कि केवल मैं ही नहीं पाप कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण आप भी पाप कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे सारथी हैं, मेरे साथ हैं, आप डायरेक्शन दे रहे हैं, आप कर रहे हैं, इसलिए आप भी पाप के भागीदार हैं। देखो अर्जुन को मृत्यु का भय था, मृत्यु का भय, अगर भगवान उसको कहते कि तुम युद्ध कर तो उसका मृत्यु का भय जाता क्या? जिस व्यक्ति को मृत्यु का भय है उस व्यक्ति को अगर आप कहो कि तुम युद्ध करो तो उसका भय क्या चला जाएगा? मृत्यु का भय जाएगा किससे? केवल आत्मज्ञान छोड़ के और किसी से मृत्यु का भय नहीं जाएगा। इसलिए भगवान अर्जुन को पूरा आत्मज्ञान पहले दे दिया। आत्मज्ञान देने के बाद में अर्जुन बैठा रहा, भगवान ने कहा था उठो तुम करो, लड़ाई करो, युद्ध करो। अर्जुन खड़ा नहीं हुआ। अच्छा, इसका आप लोग ऐसा मतलब नहीं निकाल लेना कि अब जो है हमको भी क्या करना है, घर जाके युद्ध करना है, ऐसा नहीं है। क्षत्रिय का धर्म, उसका धर्म क्या था? उसका जो धर्म था वो धर्म निभाने को कहा कि तुम्हारा जो धर्म है वो निभाओ, तुम्हारा कर्तव्य कर्म जो है वो करो, हमारा जो कर्तव्य कर्म है वो हम करेंगे, तो आप लोग का जो कर्तव्य कर्म है वो आपको करना होगा, वो कर्तव्य कर्म छोड़ के बाहर आ जाओगे तो काम नहीं होगा, गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगी भगवान बताएंगे। 31वां नंबर सूत्र,
स्वधर्ममपि चावेक्ष, स्वधर्ममपि चावेक्ष, न विकम्पितुमर्हसि, न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धा श्रेयोन्नत, धर्म्याद्धि युद्धा श्रेयोन्नत, क्षत्रियस्य न विद्यते,
क्षत्रियस्य न विद्यते,
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धा श्रेयोन्नत, क्षत्रियस्य न विद्यते।
यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि यहाँ यह कहा गया है कि परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक या मोह करना नहीं बन सकता। ये हम लोगों ने देख लिया है, आत्मा की दृष्टि से, जीव की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से भगवान ने अपनी दलीलें पेश कर दी। तुम्हारा अर्जुन शोक करना नहीं बनता। केवल इतना ही नहीं, परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक और मोह नहीं बन सकते, बोले दूसरी तरह से भी नहीं बन सकता। देखो अब व्यवहारिक लेवल पर उतर रहे हैं, उसके स्वधर्म के लेवल पर उतर रहे हैं। बोले तुम क्षत्रिय हो, चलो तुम आत्मा के बारे में नहीं समझते, नहीं समझ में आया तुमको, तुम लड़ने को तैयार नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो कि नहीं, तो क्षत्रिय तुम्हारा धर्म क्या है, स्वधर्म तुम्हारा क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या बनता है? राज्य का पालन करना, और अगर उसके अंदर में युद्ध आ जाए फिर युद्ध करना होगा। तो कहते हैं स्वधर्म अपी चावेच्छ, अवेच्छ मतलब सींग देखकर, स्वधर्म की दृष्टि से भी कहते हैं न विकम्प तुम्हार से थी, विकम्प तो बोले तुमको कांपना नहीं चाहिए। आपको याद होगा कि वो जो है जब बैठ गया था तो मेरा सिर घूम रहा है, गांडी भात में पकड़ नहीं सकते, त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा है, ये सब उसने बताया था, ये हमको हो रहा है। तो बोले अगर आपको ये सब हो रहा है ये तो इस दृष्टि से भी नहीं बनता है, क्यों कांप रहे हो, स्वधर्म तो तुमको पालन करना है। धर्मादि युद्ध श्रेयो अन्यत, बोले धर्म जो युद्ध है वो अगर धर्म युद्ध हो, अधर्म युद्ध की बात नहीं हो रही है, जो धर्म युद्ध हो, बोले क्षत्रिय के लिए उससे बढ़िया श्रेय जिनिस हो ही नहीं सकती। देखो कोई डॉक्टर हो और वो जिस फील्ड का डॉक्टर हो उस फील्ड में उसको अगर नौकरी मिल जाए, उससे बढ़िया कोई चीज हो सकती है? नहीं हो सकती है। अब वो क्षत्रिय है, अच्छा वो क्षत्रिय है कैसे, वो क्षत्रिय बना, जन्म कैसे होता है, अभी हमने बताया आपको कारण शरीर, कारण शरीर का मतलब वासना, BMI चार्ट के अंदर जो वासना है, जैसी आपकी वासना है वैसा ही आपको शरीर में, तो क्षत्रिय शरीर मिलने के पहले आपकी वासना क्षत्रिय थी। आपका जन्म कहाँ हुआ? क्षत्रिय परिवार में हुआ। आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सब ये कहता है कि आप क्षत्रिय हो। वेरी गुड। तो व्यवहारिक जगत की दृष्टि से भी क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करना श्रेय है, आपको करना होगा। अच्छा, अगर करते हैं तो क्या होता है, नहीं करते हैं तो क्या होता है? यहां कहते हैं धर्म्यात युद्धात श्रेय। बोले ये तो राइटियस वार है, ये धर्म युद्ध है, ये अधर्म युद्ध नहीं है, इसलिए आपको ये करना है। बहुत अच्छा। तो अधर्म युद्ध करने से बोले पाप होगा, धर्म युद्ध पाप नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि तुमको जो ये धर्म युद्ध मिल रहा है, बहुत कम लोगों को ऐसा सिचुएशन मिलता है कि धर्म युद्ध, आपको अगर धर्म युद्ध का अगर मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको युद्ध करना चाहिए। तो कौरव की तरफ वाले, उन्होंने तो युद्ध थोप दिया ना आपके ऊपर में। भगवान तो गए थे सुलह करने के लिए, अच्छा तुम जो है इतनी जमीन नहीं, इतनी दे दो, कम दे दो। और हमारे गुरुदेव कहते थे चलो 5 गांव दे दो, 5 गांव नहीं तो 1 गांव के अंदर 5 घर दे दो। अच्छा 5 घर नहीं देना चाहते तो 1 मल्टी स्टोरी के अंदर 5 फ्लैट दे दो। तो वो लोग बोले हम तो सुई की नोक बराबर भी जमीन आपको नहीं देंगे। तो ये तो अधर्म था ना, तो युद्ध तो थोपा गया था। तो ये तो धर्म को बचाने के लिए युद्ध हो रहा है। और क्षत्रिय को अगर ऐसा अगर मौका मिल जाए धर्म युद्ध का, तो बोलते हैं बहुत श्रेष्ठ मौका है, इसे तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। बहुत लोग कहते हैं भगवान को युद्ध बहुत पसंद था। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। भगवान ने आगे बहुत चेष्टा की थी कि युद्ध ना हो, मगर ये इमरजेंसी आ गई। अगर इमरजेंसी आ जाएगी तो फिर तो रूल्स थोड़े चेंज हो जाते हैं, इमरजेंसी के अंदर थोड़ी सख्ती आ जाती है। फिर अर्जुन तो युद्ध करना चाहता नहीं था, हालांकि 12-13 साल तक युद्ध की सारी तैयारी करके वो युद्ध करने आया था, और उसने शंख भी बजा दिया था, युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। होने के बाद में फिर ये भी छाती तान के कह रहा था मेरे से कौन लड़ने आए हैं, मैं उनको देखना चाहता हूं। इतनी दूर तक घटना घटी थी। उसके बाद में बैठ गया। अब प्रश्न ये आता है कि अगर मेरे ऊपर कोई आक्रमण करे तो मैं बचाव करूंगा कि नहीं करूंगा? युद्ध तो पांडवों के ऊपर थोपा गया है, वो तो बोले आपको रणभूमि में जाके आपको लेना होगा, अपना हक जो है लेना है तो रणभूमि में। अच्छा बताओ, अगर आपके संपत्ति कोई दो भाई लड़ने लग जाएं, एक भाई बोले सारी संपत्ति हम रखेंगे तुमको नहीं देंगे, हालांकि विल के अंदर लिखा हुआ है कि दोनों भाई का इक्वल है, तो क्या करेगा? अगर कोई थोप दे आपके ऊपर, केस उठा के कर दे, तो हमको तो डिफेंड करना होगा ना अपने आप को। तो उसी तरह से पांडवों के ऊपर ये युद्ध थोपा गया है, तो डिफेंड आपको करना है, अब आपको उपाय नहीं आपके लिए। देखो, अगर हमें कुछ बीमारी लग जाती है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना स्वस्थ होने के लिए। इंडिया के गांव वगैरह में जाते हैं तो डॉक्टर के पास में बोलते हैं कि डॉक्टर देखता है, देख के मतलब उसके कुछ प्रेस्क्रिप्शन देने के पहले ही लोग कहते हैं डॉक्टर को एक सुई लगा दो इंजेक्शन के बदले, एक सुई लगा दो आप, पहले कुछ हो नहीं हो सुई लगा दो एक। डॉक्टर बोलते रुको, सुई की दरकार होगी दे देंगे। हम एक ऐसे पेशेंट को जानते हैं जिसके पेट में बहुत दर्द था, उसने कहा डॉक्टर बोला सुई लगा दो। अब डॉक्टर बोलता है बोले सुई लगाने का काम ही नहीं है। फिर उसने क्या किया, उसने वो डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन लगा दिया, सुई लगा दिया, और जैसे ही सुई लगा दिया बोले पेट का दर्द चला गया। होता है, ऐसा होता है, सुई लगा दो बस, वो बस उसके अंदर विश्वास है। वहां नॉर्थ इंडिया में डॉक्टर लोग कभी ना वो आपको प्रेस्क्रिप्शन लिख के नहीं देते कि आप दवाई खाने से दवाई ले आओ, ऐसा नहीं है। वो सारा खोल के ये लाल वाली दवाई इस टाइम खानी है, पीली वाली इस खानी है, सफेद वाली इस टाइम खानी है, नाम आपको नहीं बताएंगे वो। कभी नहीं बताएंगे, सब पुड़िया पुड़िया बना के दे देंगे, ये सवेरे ये शाम को, काम हो भी जाता है वैसे। अच्छा फिर कई बार आपको डॉक्टर बोलते हैं भाई ये तो आपका क्रॉनिक है, ये तो आपको अब ऑपरेशन करना होगा, तो हम ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, क्यों करवाते हैं, स्वस्थ होने के लिए करते हैं ना। फिर कई बार कहते हैं कि आपके अंग को काट देना होगा, गैंग्रीन हो गई है, काट देते हैं कि नहीं, हम क्यों काटते हैं, स्वस्थ होने के लिए। कई बार ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, लीवर यहाँ से वहाँ, हम करते हैं सब स्वस्थ होने के लिए। ठीक उसी तरह से अगर समाज में रोग हो जाए, समाज में अगर अधर्म हो जाए, या अधर्म ही समाज का कैंसर है, तो उस धर्म अधर्म को हटाने के लिए आप कुछ नहीं करोगे, करना पड़ेगा ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान तो वही कर रहे हैं, अधर्म को हटाना है, तो अधर्म कैसे हटेगा। हमने एक दिन आगे भी आपको बताया था कि अधर्म ऐसा और धर्म ऐसा नहीं है कि हमने यहां झंडा गाड़ दिया, ये मकान जो है धार्मिक है, धर्म है, धर्म लोगों के हृदय में रहता है, बदलाव वहां चाहिए, अगर कोई नहीं बदले तो फिर क्या करना होगा। वही हुआ, सबको हटाना पड़ता फिर साफ। बहुत अच्छा, तो उसका अर्जुन का धर्म क्या था, स्वधर्म था युद्ध करना। भगवान कहते हैं कि देखो अगर युद्ध करोगे तुम्हारा इसमें विकास होगा, इवोल्यूशन होगा, अपना स्वधर्म करोगे तो विकास होगा। आपको लगता होगा कैसे विकास होगा, लगता है ना, स्वधर्म के पालन करने से, युद्ध के करने से तुम्हारा विकास होगा, कैसे विकास होगा, आपकी वासनाओं का क्षय होता है। जिस तरीके से भगवान कहेंगे कि युद्ध करो, उस तरीके से युद्ध करने से, जिस तरीके से भगवान ने आपको, आप आगे जाके कहेंगे कि आपको कर्तव्य कर्म कैसे करने चाहिए। अर्जुन का कर्तव्य कर्म क्या था, युद्ध करना था, किस तरीके से करना है वो बताएंगे अभी। उस तरीके से आप अगर कर्तव्य कर्म करोगे तो आपकी वासना या टेंडेंसी या लाइक्स और डिसलाइक्स वो कम होगी, तो आपका विकास हुआ कि आपका ह्रास हुआ, देखो विकास होगा। अपना स्वधर्म अगर आप पालन करोगे जैसे भगवान कहेंगे तो उसमें भी आपका विकास होने वाला है। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है, बोले क्षत्रिय का धर्म है आतताई को मारना। आतताई वर्ड आगे आया था, याद है आपको, अर्जुन ने कहा था कि ये सारे के सारे लोग आतताई हैं। आतताई किसको कहते हैं, आतताई मतलब टेररिस्ट। नीति का को समझ नहीं आएगा आतताई क्या हो गया। टेररिस्ट तो कहते हैं टेररिस्ट को मार देना चाहिए। तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है गुरुन बाल वृद्धौ व ब्राह्मणा व बहुश्रुतम आतताई अनातम हन्यादेव अविचारयत, बिना विचार किए हुए, कोई विचार नहीं करना है, ये नहीं कि पकड़ के ले आओ इसको कोर्ट के अंदर खड़ा करो इसका विचार होगा उसके बाद में आपको ये करना है, नहीं। मनुस्मृति के हिसाब से गुरु हो, बाल मीन्स बालक हो, वृद्ध हो, कोई सीनियर हो, वरिष्ठ हो, वृद्ध हो, ब्राह्मण हो, हम लोग कहते हैं ना ब्राह्मण हत्या कर दी बहुत बड़ा पाप है, यहां कहते हैं ब्राह्मण हो, बहुश्रुतम विद्वान हो, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है मगर वो आता ही हो, तो कहते हैं अनातम हन्याद एव, हन्याद एव एल्लो, साफ कर दो, मार दो। आतताई कौन कौन है, किसको आतताई कहते हैं, जो दूसरों के घर में आग लगा दे आतताई उसको कहते हैं। कौरवों ने पांडवों के लक्षागृह में आग लगाई थी, किसी को विष दे दे खाने के अंदर आतताई है, भीम को दिया था। किसी की संपत्ति ले ले, कौरवों ने पांडव की संपत्ति ले ली, किसी की जमीन ले ले, कौरवों ने पांडव की जमीन ले ली, कोई शस्त्र लेके मारने आए, आतता ही है, किसी के घर की बहू वो लड़की को उठा के ले जाए, आतता ही है। बोले इन लोगों को मारना चाहिए, मगर जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि ये सब पूजनीय है, देखो गुरु भी पूजनीय है, उसके बाद में बालक को भी हम मारते नहीं हैं, अच्छा वृद्ध वरिष्ठ जो है वो भी पूजनीय है, ब्राह्मण पूजनीय है, विद्वान पूजनीय है, साधारण कर्तव्य इनके प्रति क्या है हमारा कि इनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, इनका आदर करते हैं, ये पूजनीय है, मगर ये अगर आतताई बन जाए तो मारने में ही भलाई है। इसलिए यह युद्ध जो है धार्मिक है, व्यवस्था को ठीक करना है, धर्म युद्ध है, अर्जुन तुमको इसको युद्ध करना चाहिए। यहां पर उसके बाद में ये भी कहा कि पृथ्वी जय द्वारे न धर्मार्थम प्रजा रक्षणार्थम च इति धर्मात् अनपेतम। यह युद्ध पृथ्वी विजय द्वारा धर्म पालन और प्रजा रक्षण के लिए किया जाता है, इसलिए आपको ये अर्जुन ये युद्ध करना चाहिए। धर्म से ओतप्रोत परम धर्म है ये, अतः इस धर्म युद्ध के सिवा दूसरा कुछ क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी नहीं है। देखो क्षत्रिय अगर अपना कर्तव्य कर्म करेगा तो सोसाइटी आगे बढ़ेगी, अगर अधर्म को नहीं काटा गया, नहीं उसको रोका गया, तो सोसाइटी का विकास नहीं होगा, आगे जाके बहुत तकलीफें आने वाली हैं। हमारा क्या है कर्तव्य कर्म, हम सबका अपना अपना कर्तव्य कर्म है, हमारा कर्तव्य कर्म का है अपने माता पिता, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, इनके प्रति हमारा कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? क्योंकि उनका मेरे ऊपर अधिकार है, पत्नी का पति के ऊपर अधिकार है कि आपने अगर विवाह किया है तो आपको अब संरक्षण करना है, आपको परिवार चलाना है, इसलिए पति का ये कर्तव्य बन जाता है कि इन सबका संरक्षण करें, बच्चों का पालन करें, अगर मान लो आप नहीं करते हो, प्रॉब्लम सोसाइटी में आएगी कि नहीं आएगी, कौन देखेगा उनको, दूसरों के लिए प्रॉब्लम बन गए, तो कर्तव्य कर्म आपको करना ही करना है। और आपका जो है जन्म, तो बोलते वो तो स्वभाव के अनुसार होता है, आपका जो स्वभाव था उसके अनुसार आपका जन्म होगा, जैसा आपकी वासना होगी उसके हिसाब से आपको जन्म लेना है। अच्छा देखो उसके स्वधर्म के हिसाब से भी बोले युद्ध तुमको करना है, आत्मा की दृष्टि से शोक नहीं बनता युद्ध करो, जीव की दृष्टि से शोक नहीं बनता युद्ध करो, शरीर की दृष्टि से भी शोक नहीं बनता युद्ध करो, एक स्तर और नीचे आए स्वधर्म, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्षत्रिय धर्म है, इसलिए क्षत्रिय धर्म की तरफ से भी तुमको युद्ध करना चाहिए। अब कहते हैं शिष्टाचार, शिष्टाचार की दृष्टि से भी आपको करना है, क्या है शिष्टाचार?
यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गदारमपावृतम् सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गदारमपावृतम् सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्।
भगवान कहते हैं और भी ये युद्ध किस लिए कर्तव्य है, सो कहते हैं यदृच्छया, यदृच्छया मतलब अप्रार्थितिया, आपने नहीं चाहा, आपके ऊपर युद्ध थोपा गया है, आपने इसकी प्रार्थना नहीं की थी कि हम युद्ध करेंगे, पांडवों ने प्रार्थना नहीं की थी, कौरव ने थोप दिया। यदि अप्रार्थ्यम उपपन्नम, उपपन्नम आगतम, यह आ गया, युद्ध आपके पास में आ गया है, आपने नहीं चाहा था मगर आपके पास में आ गया है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, बोले इससे क्या होगा, बोले धर्म क्षत्रिय के लिए बहुत परम उपस्थित, मतलब बहुत ही परम उत्तम परिस्थिति है। बोले स्वर्ग द्वार अपावृतम, स्वर्ग द्वार खुला हुआ है, वहां पर कोई गेट कीपर नहीं है, ये नहीं कि आप जाओगे दरवाजा बंद मिलेगा या कोई आपसे पूछेगा आईडी कार्ड दिखाओ तब जाने देंगे। हमारे यहाँ सिक्योरिटी में आईडी कार्ड देखते हैं ना, एयरपोर्ट में घुसो उधर जाने के लिए आईडी कार्ड। बोले अपावृतम आ सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्ध ईदृशम, बोले क्षत्रिय बहुत खुश होते हैं जब ऐसा उनको मिल जाता है, ऐसी परिस्थिति मिल जाए, युद्ध करने की परिस्थिति मिल जाए तो बोलते बहुत खुशी होती है लोग। अच्छा कैसे होता है ये भाई, देखो अगर किसी म्यूजिशियन कोई म्यूजिक सीख रहा हो या म्यूजिशियन अच्छा हो, अच्छा कलाकार हो, जैसे इंडिया में कोई हो और आप उसको कहो भाई हम चाहते हैं आप शिकागो में आके एक बार बजाएं, देखो कितना खुश होगा, हमको अमेरिका में चांस मिल रहा है, हमने मांगा नहीं वो यहाँ गया, कितना खुश होता है। यहाँ का कोई कलाकार हो आपका जान पहचान का और वो बेचारे को चांस नहीं मिलता है बजाने का, कोई मतलब दर्शक नहीं मिलते हैं, उसको अगर बोलो कि भाई यमुनोत्री में होने वाला है अगले साल हमारा महासमाधि कैंप, 1000 लोग होंगे, आपको हम चांस देते हैं आप आओ बजाना वहां पर, बहुत खुश होगा वो। बोलते हैं ये इसी तरह से सुखी ना, बोले क्षत्रिय लोग बहुत खुश होते हैं, धर्म युद्ध का हमको लड़ने को मिला, बोलते हैं बहुत खुश होते हैं। इसके अलावा भी भगवान कहते हैं कि कुंती ने भीम अर्जुन को संदेश भेजा था, क्या संदेश भेजा था कि छत्रानी बच्चों को जन्म देती है इस दिन के लिए, उनको गर्व होता है। बोले अब ये समय आ गया है अर्जुन, तुम्हारी मां ने भी ये चिट्ठी लिख के भेजी है, तो तुमको फिर इसमें क्या सोचना है, लो ये युद्ध है तुम्हारा। ऐसा ही भगत सिंह के साथ हुआ था। भगत सिंह के चाचा जो थे वो युद्ध में वीरगति उनको मिली, तब भगत सिंह बहुत छोटे थे, अपनी माँ से पूछा क्या हुआ ये, तो माँ ने कहा कि ये ऐसी वीर गति मिलना युद्ध के अंदर मरना, बोले 100 जन्म से भी ज्यादा अच्छा ये। अब देखो बच्चे के दिल में बात बैठ गई, अब जब उनको फांसी हुई तो उन्होंने हमारी माँ को एक बार बुला दो, बुला के वही बात कही, या आपने एक बार कहा था कि ऐसा मरना 100 जन्म जीने से भी बेहतर है, तो आज हमको फांसी हो रही है मगर मैं बहुत खुश हूं। देखो जो वीर जो होते हैं ना उनकी दृष्टि बड़ी ऊंची होती है, शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट सब झेल लेते हैं, हमारी दृष्टि कहां है, हमारा दृष्टि जो है वो पेट के ऊपर लगा हुआ है, थोड़ा सा कुछ होता है बस हम लोग, इनका विचार देखो कितना ऊंचा होता है, ऊंचे विचार के होते हैं, इस वास्ते सब सहन कर पाते हैं। कहते हैं कि ऐसा हुआ जब, फिर कहते हैं अब वो स्वधर्म नहीं करोगे तो क्या होगा, इसको अब बता रहे हैं।
अथ चेत्वम इमं धर्म्यम, अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि, संग्रामं न करिष्यसि, तत स्वधर्मं कीर्तिं च ततस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा पापमवाप्स्यसि अथ चेत्त्वं इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि।
कहते हैं स्वधर्म न करने का परिणाम क्या होगा, ये कहते हैं। इस प्रकार कर्तव्य रूप से प्राप्त होने पर भी अथ चेत इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यति, ये धर्म संग्राम आपके पास में आया है, अगर न करिष्यति तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, ततः स्वधर्मम कीर्तिम चहित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो आपका क्या क्या जाएगा, बोले स्वधर्म हित्वा स्वधर्म का नाश होगा, कीर्ति हित्वा कीर्ति का नाश होगा, और तीसरा पाप मिलेगा। स्वधर्म भी गया, यश तो मिलेगा ही नहीं, स्वधर्म हित्वा स्वधर्म का नाश होगा, कीर्ति का नाश हो रहा है और पाप भी मिल रहा है, तीन चीजें होगी। आपको युद्ध मिला, धर्म युद्ध मिला, आप करना नहीं चाह रहे हो। आपको अपने पसंद का जॉब मिल गया, आपकी लाइन का मिल गया, वो भी अगर आप नहीं करना चाहो तो फिर आपका स्वधर्म का पालन नहीं हुआ। कीर्ति बोलेंगे देखो डॉक्टरी पढ़े थे आप, क्या हो गया, इमम इमम मतलब ये युद्ध, युद्ध शुरू हो चुका है, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, शंख बज चुके हैं, इसके बाद भी संग्राम। देखो युद्ध का एक बहुत बढ़िया वर्ड यहां पर संग्राम कहा, संग्राम के अंदर सम वर्ड लगा हुआ है, समथिंग गुड विल हैपन, कुछ अच्छा होने वाला है, बोले संग्राम। धर्मशास्त्र के अंदर कहा कि अगर स्वधर्म का नाश कैसे होता है, तो कहते हैं कि एक एक्ट ऑफ ओमिशन होता है, एक एक्ट ऑफ कमीशन होता है। ओमिशन जो आपको करना चाहिए, जो आपका कर्तव्य है आप नहीं करते हो, उससे आपको पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा, एक्ट ऑफ ओमिशन। जो आपका कर्तव्य कर्म है आप नहीं करते हो तो भी पाप मिलेगा, जो आपको नहीं करना चाहिए आप करते हो तो भी पाप मिलेगा। तो एक एक्ट ऑफ ओमिशन है, एक एक्ट ऑफ कमीशन है, दोनों से आपको ये मिलेगा। अगर धर्म युद्ध अगर वो ना करे अर्जुन तो क्या मिलेगा उसको, पाप मिलेगा। बहुत अच्छा, देखो सभी की वर्तमान परिस्थिति विकास का हेतु होता है। अब वो वर्तमान परिस्थिति जो है अनुकूल हो सकती है और प्रतिकूल हो सकती है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपका विकास होगा, उस प्रतिकूल परिस्थिति को भी आप जो है तपस्या समझ के उसको पार कर जाओ, तपस्या करके उसको पार। ये परिस्थिति क्यों आई है, कौन दाई है इसके लिए, हम दाई हैं, हमारे पिछले कर्मों का फल इस परिस्थिति के रूप में आया है, किसको यह कर्मफल भोगना है। तो इस परिस्थिति को भोगने के लिए कहते हैं कि आप तपस्या समझ के इसको क्रॉस कर जाओ, पार कर लो, इसमें आपका विकास होगा। भगवान ने यह दिया है, भक्त इसको प्रसाद मानते हैं, भक्त भगवान का यह प्रसाद है। देखो भगवान जो है आपके शत्रु नहीं है, वो जज भी नहीं बैठे हुए कि जज है आपने कुछ ये किया इसलिए आपको ऐसा करना, नहीं, भगवान जो आपके सुहृद हैं, आपके हितैषी हैं। भगवान जानते हैं कि ये अगर आप परिस्थिति ये तपस करके अगर आप आगे चढ़ जाओगे तो आपका विकास होने वाला है, आप आगे बढ़ पाओगे। अगर धर्म पूर्वक अपने अपना कर्तव्य किया, धर्म पूर्वक, अधर्म पूर्वक नहीं, धर्म पूर्वक अगर हमने अपना कर्म किया तो वासना का क्षय होगा कि वृद्धि होगी? अधर्म पूर्वक किया तो यहां पर उनको कह रहे हैं कि तुमको ये करना चाहिए, स्वधर्म, स्वधर्म का नाश हो जाएगा, वासना बढ़ जाएगी आपकी। दूसरा कहते हैं कीर्तिम हित्वा, अगर युद्ध नहीं करोगे तो कीर्ति, यश तुम्हारा जाएगा। कैसे यश जाएगा? कि महादेव आदि से आपने लड़ाई करके आपने कीर्ति प्राप्त की, आपको यश, कहां कहां आपने युद्ध किया है, आपको ये कीर्ति प्राप्त है, तो वो कीर्ति का नाश हो जाएगा। देखो अर्जुन एक बार शोकग्रस्त हुआ है युद्ध भी में, आज तक हम उसकी चर्चा करते हैं, कितने साल हो गए? अर्जुन एक बार शोकग्रस्त हुआ है, उसकी चर्चा चलती आ रही है। अगर युद्ध भूमि से भागा नहीं है, अगर भाग जाए तो कितनी दूर तक चर्चा चलती रहेगी? अभी भागना, भागा नहीं है, वो केवल भागने की सोच रहा है। और एक बार शोक में पड़ गया, एक बार रो पड़ा है, तो हम उसकी चर्चा अभी तक करते रहते हैं। देखो अर्जुन जैसा वीर रो पड़ा, इमोशंस में आ गया और रो पड़ा, बहुत अच्छा। पापम अवाप्सी, पापम अवाप्सी क्या है? स्वधर्म नहीं करने से पाप। देखो सीधा सीधा इसका हिसाब है कि स्वधर्म का पालन धार्मिक वे से करोगे तो आपकी वासना का क्षय, नहीं करोगे जैसे कहा करने को तो आपका वासना बढ़ती जाएगी, वासना बढ़ती जाएगी, फिर आपको शरीर लेना होंगे। इच्छा आपकी है, मन में पश्चाताप बना रहेगा कि मुझे एक धर्म युद्ध करने का अवसर मिला, मैंने नहीं किया। सारा जीवन जितने दिन तक वो जीता रहेगा तो उसको पश्चाताप लगा रहेगा, नहीं लगेगा। अगर आप लोग मान लीजिए जीवन में कोई अवसर आया और वो अवसर को आपने खो दिया, फिर पश्चाताप रहेगा। हम एक ऐसे परिवार को यहां जानते हैं, एक बच्चा जो है क्लास 12 पास करने के बाद में कॉलेज में गया, जाके एक साल में वापस आ गया, घर वापस आ गया। दूसरे बच्चे बढ़ रहे हैं, हम थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अब ये क्या सोचेगा? सोचेगा सारी जिंदगी कि मेरा सहपाठी एक दिन डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मेरा स्वधर्म उस टाइम में क्या बनता था? पढ़ाई लिखाई करें, और उसको ये भूत सवार हो गया कि मुझे कमाना चाहिए, लो अब वो मॉल में बैठ के $8, $12 घंटे के हिसाब से काम करता है। बताओ ये उसका स्वधर्म है? नहीं है ना, ऐसा होता है। तो पश्चाताप, इसको सारा जीवन पश्चाताप रहेगा जब वो अपने सहपाठियों को देखेगा, एक वहां है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई बड़ा डॉक्टर बन गया, कोई बड़ा इंजीनियर बन गया, और मैं मॉल में बैठा हुआ। पश्चाताप नहीं होगा कि मेरे माँ बाप ने इतना प्रयास किया था कि पढ़ाई लिखाई कर लो, आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ में। फिर सोचेगा कि उनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही नहीं पढ़ा, ऐसा होता है। तो मन अशांत रहेगा, मन अशांत रहना मतलब पाप। जब आपके, हमारे गुरुदेव कहते थे किंडल लाइफ में कहा हुआ है कि अगर आपका मन अशांत है वो पाप है, पुण्य क्या है? मन शांत है वो पुण्य है, दैट्स ऑल। बहुत अच्छा। अब कहते हैं कीर्ति की हानि जो है तीन तरीके से हो सकती है, तीन तरीके से उन्होंने बताया। एक साधारण लोग कैसे आपके साथ में कीर्ति हानियों से बात, आपसे बात करेंगे, आपके बारे में कैसा बोलेंगे, आपके जो प्रियजन हैं वो लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, और एक जो आपके दुश्मन है, शत्रु हैं, वो कैसा व्यवहार करेंगे? देखो, एक कीर्ति तीन एंगल से भगवान बताने जा रहे हैं, अब वो है 34, 35 और 36वां श्लोक। तो ये हम कंप्लीट तो कर नहीं पाएंगे आज, 5 मिनट बाकी हैं। हम चाहेंगे कि इनको एक साथ लें कीर्ति का, तो पढ़ लेते हैं एक बार, एक श्लोक पढ़ के थोड़ा सा इसका मीनिंग देख लेते हैं।
अकीर्तिं चापि भूतानि,
अकीर्तिं चापि भूतानि,
कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्,
कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्,
संभावितस्य चाकीर्तिः, संभावितस्य चाकीर्तिः, मरणादतिरिच्यते, मरणादतिरिच्यते, अकीर्तिं चापि भूतानि, कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, संभावितस्य चाकीर्तिः, मरणादतिरिच्यते।
भूतानि, भूतानि मतलब साधारण प्राणी, ये साधारण प्राणी वाचक शब्द है भूतानि। सब लोग क्या कहेंगे, इस भूतानी के अंदर देवता आ जाएंगे, ऋषि मुनि आ जाएंगे और पशु पक्षी सब, वो ऑल भूतानीस। अकृत्रिम चापी भूतानी कथिचंती, बोलते रहेंगे ये कितने दिन तक बोलते रहेंगे, अव्याम, अव्याम का यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं दीर्घ काल तक चलता रहेगा, बहुत दिनों तक चलता रहेगा। हम उदाहरण देंगे आपको, बढ़िया बढ़िया उदाहरण देंगे आपको, तब आपको समझ आएगा कितना दीर्घकाल तक चलता रहता है अकीर्ति। और संभावितस्य, संभावितस्य मतलब जो प्रतिष्ठित आदमी है उनकी कीर्ति अगर नाश हो जाए एक बार, बोलते मरने से भी ज्यादा खराब हो। संभावित मतलब प्रतिष्ठित आदमी की अगर कीर्ति नाश हो जाए तो बोलते मरने से भी ज्यादा है वो। साधारण आदमी की 100 गलती कर दे आंख में नहीं पड़ती है, मगर प्रतिष्ठित आदमी 1 गलती कर दे, 1 गलत स्टेटमेंट कह दे, दैट बिकम्स अ ब्रेकिंग न्यूज। बनती है कि नहीं बनती है? अब आपके इलेक्शन में कई बार ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है, एक एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस के लिए ब्रेकिंग न्यूज हो जाता है। क्यों? संभावित, प्रतिष्ठित। हमारे देश के प्रतिष्ठित 2 नेता ऊपर उठ रहे हैं, उनके शब्द, एक एक शब्द के ऊपर विचार होता है, क्या इनके विचार हैं, क्या कह दिया इन्होंने। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज रवि जी के शुभ जन्मदिन है तो हम लोग जन्मदिन में दम गाएंगे उनके लिए, सबको। मेरा तो गला बहुत खराब है, सब मिलके तो
जन्मदिन मिदम् आय प्रिय सखे।
शंतनो तु ते सर्वदा मुदम्, शंतनो तु ते सर्वदा मुदम्, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी।
ईश्वर सदा त्वं च रक्षतु ईश्वर सदा त्वं च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया जीवनं तव भवतु सार्थकम् जीवनं तव भवतु सार्थकम् जन्मदिनमिदं जन्मदिनमिदं।
Happy birthday to you.